अगले पाकिस्तान के मौजूद जो आगाज में बात हुई थी वहां से आपको अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान अभी तक अपने फैसलों में आजाद नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि अपने फैसलों में आजाद नहीं है। ठीक है, अब आ जाए कश्मीर के ऊपर। कश्मीर के हल्के से तारीखचा इंशाल्लाह आप सबके ध्यानों में होना चाहिए कि ये वो इलाका है कश्मीर, ये वो इलाका है कि जिसे बरसगीर का ताज कहा करते थे। बरसगीर का ताज क्या मतलब? मतलब ये कि आप देखिए ये पाकिस्तान और इंडिया के शुमाल में जाके ऊंचाई के ऊपर है और इतना खूबसूरत इलाका है और इतना तबीयी तौर पे घनी इलाका है कि इसको कायद आजम ने कहा कि ये शहर के हयात है। शहर के हयात से मुराद ये होती है कि भाई यही यानी काट दिया जाए तो आपको पता है खून ही नहीं पहुंचता ना। मुराद ये कि शरियानों में पाकिस्तान के इसका पानी है और ये वो शहरक है कि अगर ये काट दी जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान। पानी बहुत बड़ा मसला है। इंडिया भी सारी यानी पानी की सारी बड़े चश्मों और नहरों का रुख मोड़ रहा है अपनी तरफ, जो वही 40-50 साल से कर रहा है। यहाँ पर जब तक अंग्रेज नहीं आया था, इत्तेफाक की बात है कि इस इलाके के अंदर मुसलमानों के बजाय हमेशा सिखों की हुकूमत रही है। ये वो इलाका है कश्मीर के जहाँ पर सिख बाकायदा गवर्नमेंट बना, यानी यूँ कहिए कि एक निज़ाम था जिसको ये कहते थे कि यानी बादशाह तो ना कहिए लेकिन बस वो बादशाह जैसे ही हुआ करता था और वो इस इलाके पर जाना वो मुसल्लत रहा करता था। अंग्रेजों ने आने के बाद इनके हाथ से ले लिया। 1885 की बातें कर रहा हूँ, 1865 से लेकर और फिर 85 तक इन्होंने अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया इस इलाके को, कश्मीर को भी ले लिया। लेकिन फिर बाद में दोबारा सिखों ने इसको खरीद लिया। उस वक्त उन्होंने कहते 7 मिलियन यानी 75 लाख रुपए दिए उस जमाने में। 75 लाख रुपए कहाँ के? इंडिया के। वो देके सिखों ने अंग्रेजों से वापस ले लिया ये इलाका। और फिर यहाँ पर वो हरि सिंह जो आखिरी में आ गया वो काफी अर्से यहाँ पर रहा मुसल्लत। फिर जब पाकिस्तान बनने की बातें हुई तो वही जो तय पाया था कि जो भी अक्सरियती इलाका है मुसलमानों का वो पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा और जो हिंदुओं का अक्सरियती इलाका है वो हिंदुस्तान में चला जाएगा। ये कानून बन गया। अंग्रेज ने इसको ओके कर दिया, मोहर लग गई, खत्म हो गए बात। अब धड़ाधड़ इलाकों ने जाना शुरू कर दिया। लेकिन भाई ये कहाँ होना था, कहाँ होना था? इंडिया ने क्यों देना था आपको अपने? यानी मजबूत हुकूमत हो गई बाद में और ज़्यादा तादाद भी थी उनकी, उन्होंने तो आपसे ये भी छीन लिया कि जो आपका हो गया था जिसका बांग्लादेश कहते हैं वो इसी बुनियाद पे हो गया था कि अक्सरियती इलाका है तो पाकिस्तान का है, चाहे बीच में बॉर्डर नहीं, चाहे बीच में कोई रास्ता नहीं है लेकिन फिर भी वो हमारा है। खूब इसी तरह से बहुत सारे इलाकों को इख्तियार दिए गए। अब वो इख्तियार इसके पास भी थे। यहाँ पर जो साहब थे जो अगर उसका किसी को नाम याद हो है, डोगर से थे ना, ये जो आखिरी आदमी था ना 70 हैरी सिंह ही है ना, कुछ इसी तरह का नाम था। अब ये चला गया इंडिया, जब तय हो रहा है कि आया ये पाकिस्तान के साथ मिलना है या उस तरफ मिलना है, ये चला गया इंडिया। और उसने कहा भाई क्योंकि था भी हिंदू, इसने कहा मैंने तो आपके साथ मिलना है, यानी मुराद सिख, उसने कहा मैंने तो आपके साथ मिलना है, मैंने पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है तुम एक लेटर लिख दो यूनाइटेड नेशन को भी लिख दो और अंग्रेजों को भी लिख दो कि भाई मैंने फैसला किया, मैं लोगों की राय नहीं ली गई और उसने फैसला कर दिया। एक साल पूरा मुतनाज़ हो गया ये इलाका। हमने पहली जंग मुसल्लत कर दी, पाकिस्तान ने 47 में पहली जंग कश्मीर की वजह से रोना शुरू कर दी कि भाई ये हमारी तरफ आएगा, और उन्होंने कहा नहीं आएगा, हमने कहा आएगा। और उसमें हमें मिल गया ये जो आपके पास है 30% और उस तरफ चला गया 70%। 30% हमारे पास आ गया उस जंग के नतीजे में जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, 70% मारा गया। ये मुतनाज़ इलाके बन गया। अंग्रेजों ने वो LOC नामी एक अपने तौर पर जब वो सरहद खींच दी गई, ये वो शिमला मुहिदा और जो इस तरह के भुट्टो साहब ने किए थे उसके नतीजे में हुआ। हमने फिर दूसरी जंग भी की 65 में, तीसरी जंग भी 70 की। तीनों जंगें हमारी 47 में पहली हुई, 65 में दूसरी, 70 में तीसरी हुई। ये हमारी जंग इस कश्मीर के ऊपर हुई है, कश्मीर के मौजूद हुई है जिसको हमारे साथ आना है। यानी हमने वाकई जंगें लड़ी हैं इस मौजूद पर कि ये हमारी तरफ आना चाहिए पूरा कश्मीर। और वहाँ के लोग भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये सबसे बड़ा नारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये सबसे बड़ा नारा उनका था कम से कम। अब वो ये कि हमने जो है ना वो फिर इस 47 के अंदर या शिमला मुहिदे के बाद या भुट्टो साहब के ज़माने में जब हल्के पड़ गए हम तो उन्होंने अपनी ग्रिप मजबूत कर ली उसके ऊपर, मजबूत करते चले गए। जवानों को ऐसा ऐसा गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, तहरीक खत्म हो गई है। और 88 में दोबारा से एक तहरीक उठ गई इसी कश्मीर के अंदर, दोबारा से तहरीक उठ गई, रेजिस्टेंस पावर, वही जिसको हम कह रहे हैं इस वक्त मुकावमत, जो आपको फलस्तीन में नजर आ रही है, जो आपको लेबनान में नजर आ रही है, जो यमन में नजर आ रही है, जो अफगानिस्तान में इंशाल्लाह नजर आ रही है और पाकिस्तान में इंशाल्लाह, अगर इसी तरह से अंग्रेज और सऊदी अरबिया के कहने पर ही चलते रहे तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस पावर आ जाएंगी। सुन्नी शिया सब कायम करेंगे, भाई क्या कर रहे हैं, मुल्क को तबाह कर दिया। इसी तरह की रेजिस्टेंस पावर जो है ना वो उठी कहाँ पे, कश्मीर में 88 उठ गई बड़े उरूज पर। और हमने 70,000 से ज़्यादा शहीद दिए उस एक जंग में, 70,000 कश्मीरी उस जंग में जो 88 से शुरू हुई, छापामार जंग है ना सारी। उसके बाद फिर इंडिया ने अपनी फौजें भेजना शुरू की और 6 लाख फौजें जो पूरी उस जमाने में 88, 89, 90, 91 उस जमाने में हमारी तादाद 7-6 लाख थी टोटल फौज की, हमारी टोटल फौज 6 लाख की है पाकिस्तान की। उन्होंने खाली कश्मीर कंट्रोल करने के लिए 6 लाख फौज भेजी इंडिया ने, कंट्रोल करो। यानी अगर वो टोटल वहां के मुसलमान अगर 70 लाख 80 लाख हैं जो अभी भी शायद यही बन रहे हैं, उस 60 लाख होंगे, तो उसके मतलब हर 10 पर एक फौजी था, हर 10 कश्मीरियों पर मुसलमानों पर एक फौजी। और फिर ये अलग है, पुलिस अलग होती है, इंटेलिजेंस अलग होती है, दूसरी और छोटी पावर्स अलग होती है, इसका मतलब हर 4-5 पर जो है ना वो एक, या कम से कम 7 के ऊपर एक फौजी या इस तरह का अपना आदमी रखा हुआ था। ये 88 से शुरू हुआ, रेजिस्टेंस चलती रही, बाद में जो है थोड़ा उरूज मिला, फिर नीचे आ गई। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यानी इनके मसाइल, इनकी मुश्किलात, किसी की तरजीह में है किसी की तरजीह में नहीं है। मुशर्रफ साहब बहुत परेशान हुए, उन्होंने कब्जा कर लिया जाके कारगिल पे, कारगिल के ऊपर उनका कब्जा हो गया, इन्होंने जाके मुजाकरात कर लिया, उसको वापस बुला लिया, फौजी नीचे आ गई, इनकी झगड़े हो गए, उसने हटा दिया, ये आ गए। अब हम समझ रहे थे ये आ गए मुशर्रफ, तब तो दोबारा जिहाद खुल जाएगा, उल्टा हो गया। इन्होंने कि अमेरिका की बातें मानना शुरू कर दी, जिहाद सारी लपेट दिए, उन्होंने खत्म करो, कोई नहीं चाहिए, सारी पावर्स जितनी ऑर्गेनाइजेशन सबको घर भिजवा दिया, सारी क्यादतें उठा के जेल में डाल दी, जिन्होंने बात नहीं मानी, जिन्होंने बात मान ली उनको ये पाकिस्तान के पासपोर्ट मिल गए और वो सब पाकिस्तान में रह रहे हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन के जो पहले वहां की बुनियाद पर उनकी क्यादतें सारी यहाँ आ गई, शिया क्यादतें भी यहाँ पर हैं, सुन्नी क्यादतें भी यहाँ पर हैं, हिजबुल मुजाहिदीन भी यहाँ पर है और हिजबुल मोमिनीन भी यहाँ पर है, आपको पता है। उसके बाद जो रेजिडेंस मुकामी थी जिसमें हमने लश्कर तैयबा और पता नहीं इस तरह के जो ग्रुप्स हमने बनाए हुए थे वो भी उन्होंने ऐसे खत्म कर दिए, और हमने कबूल कर लिया कि भाई अब यानी इसका जो हल है ना वो ये है कि किस तरह मुजाकरात के जरिए से हम इसको हल करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के मुजाकरात शुरू हो गए, काफ़ी मरतबा हम बैठे आपस में, नहीं हुए, बीच में डाला गया बाहर की पावर्स को, कभी इसको हल कर दो, उसी बुनियाद पर हल कर दो जो हमने तय किया हुआ है कि यहाँ के लोगों को इजाज़त दे दो कि वो रेफरेंडम करके तय कर लें कि पाकिस्तान के साथ रहना है या इंडिया के साथ रहना है। ये जो नेहरू ने खुद 1948 में तय कर दिया था कि हाँ भाई ये होना है, कब होना है ये नहीं लिखा हुआ था, और वो आज तक नहीं हुआ। 1948 में नेहरू ने तय किया हुआ और अभी तक वो नहीं हुआ, अंग्रेजों ने तय किया तो उससे पहले 47 नहीं हुआ और आज तक नहीं हुआ। अब इन्होंने सियासत क्या की थी, सियासत उन्होंने की थी कि मुल्क के अंदर से कोशिश करें कि जो पाकिस्तान के साथ इलाहाब चाहते हैं ना, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, उनकी तादाद कम हो जाए। ये इन्होंने सब ने सियासत किया अंदर, जिसकी वजह से वो 88 के अंदर पावर उठे भी थी रेजिस्टेंस पावर। उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर सियासत हो रही है, इन्होंने नाम निहाद क्यादतें बनाई हैं। अभी यासिन मलिक उनका जो लीडर है वो यासिन मलिक है, उसको कहा कि अब तुम जो है ना वो यानी ये तय करो कि खुद मुख्तार कश्मीर ना वो इंडिया के साथ है ना वो पाकिस्तान के साथ। हमारा मौकफ क्या है, पाकिस्तान का मौकफ क्या है, पाकिस्तान का मौकफ यह है कि नहीं हम ये नहीं कह रहे खुद मुख्तार, हम ये भी नहीं कह रहे इंडिया के साथ, और हम ये भी नहीं कह रहे पाकिस्तान के साथ, हम ये कह रहे हैं कि वहां के लोगों को रेफरेंडम करने दो, अपनी राय देने दो, जो राय उनकी हो ना वो। ये सब पाकिस्तान का स्टैंड है, आपको पता है पाकिस्तान में जो स्टैंड लिया जो स्टांस है वो ये है कि जो फैसला वहां के लोग करेंगे हमें वो मंजूर है। लेकिन भाई जो आखिर साजिश शुरू हुई है आखिरी के अंदर ये हुआ कि मोदी, अब इसको अगर हम यानी छोटा सा ही मोदी देखना चाहें इंडिया पाकिस्तान का, जो कि चाहता है सऊदी अरबिया, अरब अमारात, अमरीका सब ये कह रहे हैं कि इसको जो है ना वो उम्मत मुस्लिमा का इशू ना बनाओ फलस्तीन की तरह, उम्मत मुस्लिमा का इशू मत बनाओ यमन की तरह, बोले बस ये मुतनाज़े इलाका इन दो मुल्कों के दरमियान है। ये वो अंदाज है कि जो हमारे वजीर खारजा ने अपनाया हुआ है जो गलत है। ये बात का ऐसा पाकिस्तान की ऊपर मुसलत हो रही है, बात सियासतदानों पर मुसलत हो रही है, ऐसा बात अहम लोग जैसे फजल रहमान आदमी, फजल रहमान जैसा आदमी जो मजहबी और इस तरह के इशूज में सबसे आगे आगे होते तो पता है पाकिस्तान वाला, उसने आज तक एक बात नहीं की कश्मीर के मौजूद पर। 10 साल से ज्यादा ये कश्मीर का हेड रहा है, हमारे यहाँ शुभ कश्मीर का हेड रहा है 10 साल, एक लफ्ज नहीं बोला। इसका मतलब ये है कि पीछे सऊदी अरबिया ने यह तय कर लिया है अपनी जो उसकी यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस उसका है, जो उसके यहाँ पर मानने वाले उनसे कहते हैं बात ही नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट को ऐसा प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम इसमें कोई थोड़ा इलाकों में मसला है, इलाके का है बस, इसको उम्मत मसला में मसला। आईएसएस इस तरफ जा रहे थे कि रहबर मौजूम ईरानी महाराजे, पहले महाराजे कराम की बात हुई, फिर पार्लियामेंट ने पेश कर दिया बिल, फिर वो सदर साहब ने बोल दिया थोड़ा बहुत, उसके बाद आईएमए जुमा से ईरान के अंदर बात शुरू हुई और रहबर मौजूम ने बयान दे दिया। अब ये खुद बहुत उम्मत मुस्लिम का मसला बन गया, उनकी भी समझ में आ गया। ईरान ने जब इस मौजूद उठाया तब इंडिया की समझ में भी आ गया कि भाई ये इतना छोटा ही मसला नहीं है कि इसको हम आपस में जो है वो कर लें। मोदी क्या चाह रहा था, मोदी क्या चाह रहा था, अब आया मोदी चाह रहा था या पीछे इसराइल चाह रहा था, वो चाह नहीं रहे थे कि इलाका जो है ना ये पाकिस्तान तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पाकिस्तान के साथ इलाहा हो जाए। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाए तो उसको आजाद बना आजाद कर देंगे, लेकिन अभी तक उसने अपनी कौम से कह रखा है कि भाई ये वापस आ गया हमारे अंदर, जैसे बकिया हमारी रियासतें हैं, अब ये मुतनाज़े इलाके नहीं रहा, यानी 370 खत्म हो गई, 37A खत्म हो गई, अब ये मुतनाज़े इलाका नहीं रहा। हमने जो कहा था कि अब एक इंडियन कश्मीर में जाके जमीन नहीं खरीद सकता, खत्म हो गया, खरीदो जाके घर नहीं बना सकता, खत्म हो गया, जाओ बनाओ, आजाद हो गया, अब वो मुतनाज़े नहीं रहा, अब वो ओपन हो गया है, जो चाहे रहे, जितना चाहे जमीनें खरीदे, सब कुछ होता है। ये आपको पता है कि हमारे यहाँ भी पहले कानून था शुमाली इलाकाजात के लिए, बल्तिस्तान के लिए, तो खत्म किया गया, बहुत पहले खत्म कर दिया गया, और बाहर के लोगों ने वहाँ पे जमीनें खरीदना शुरू कर दी, उन्होंने वो कानून वहाँ पर खत्म कर दिया और कहा कि अब सबके लिए आजाद हो गया। अभी फिलहाल ये कह रहे हैं, लेकिन अगर ये पूरे इसराइल का है ना भाई, तो उस इलाके को बिल्कुल एक छोटा सा मुल्क आजाद कर देंगे। आजाद करने का मतलब ये कि वो आजाद तो होता ही नहीं, कभी भी आजाद नहीं होता, कभी भी आजाद नहीं होता। फिर जैसे देखिए इसराइल के अंदर एक मुल्क बनाया जिसको कहा फलस्तीन, इसराइल में ये अमरीका ने और इन्होंने मुज़ाकरात के जरिए अपना जंगों के जरिए से पहले भी बाद मुज़ाकरात के जरिए से, लेकिन बात ये नहीं थी, बात ये थी कि भाई ये पूरा फलस्तीन है, ये तो पूरा फलस्तीन है, इसमें इसराइल कहाँ से आ गया? उन्होंने पहले फलस्तीन को बनाया इसराइल, और फिर इसराइल के अंदर कहा कि अब चूंकि तुम लोग बाहर सारे मर तो सकते नहीं हो, फलस्तीनी हैं तो जिंदा तो हो, 50-60 लाख तुम्हारी तादाद है, तो ठीक है हम तुम्हें थोड़े से इलाके देते हैं अपनी हुकूमत बना लो। 70 साल की सियासत के बाद यही जो यासर अरफात था, इसने हुकूमत के लिए थोड़ा सा इलाका ले लिया, यानी पूरे इसराइल का 11% गजा और अरीहा जिसको कहा जाता था, 1992 के अंदर ये मुज़ाकरात शुरू हुए और जाके खत्म हो गए इस गजा अरीहा के ऊपर, छोटा सा इलाका मिल गया। गजा में पता हमास है, अरीहा में जो महमूद अब्बास है, वही अल्फा जिसको आप कहते हैं, उसने वहां पर अपने आप को रखा हुआ है। इसी तरह से ये इस्तकबाल मुस्तकबिल लेके जा रहे हैं कश्मीर का, यानी कश्मीर के अंदर पहले इसको इंडिया के अंदर ले आएंगे, बाद में जब आलमी प्रेशर बनेगा तो कहेंगे ठीक है छोटी-छोटी गवर्नमेंट बना देते हमारी, और छोटी सी हुकूमत होगी तो खत्म हो गई। क्या हुआ है, हुआ क्या, करने की कोशिश क्या कर रहे हैं भाईजान? जैसे जिस तरह से लबनान के अंदर रिसोर्स पावर है, जिस तरह से शानदार यमन के अंदर उठ रही है रिसोर्स पावर, जिस तरह से फलस्तीन के अंदर है, वही पोटेंशियल कश्मीर के अंदर है, पोटेंशियल के अखबार से वही पोटेंशियल कश्मीर के अंदर है। इसको छोटा ईरान कहा जाता है, इसको मिनी ईरान कहा जाता था, छोटा ईरान, ये मुल्क उसके साथ लगता, ये नाम उसके साथ लगता था, ये छोटा ईरान है कल्चर के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से मुहिब्बे अहले बैत शिया सारे नहीं है, 20% शिया होगा, लेकिन सब मुहिब्बे अहले बैत है, पूरा का पूरा कश्मीर मुहिब्बे अहले बैत है। फरकावारियत नहीं थी, कोशिश की 88 के अंदर जब जिहादी दाखिल हुए तो उन्होंने यहाँ फरकावारियत, लेकिन नहीं फैल पाई, कामयाब नहीं हो पाई। ये भी आपके लिए यानी उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे ईरानी डिप्लोमेट मेज पर बैठ के, जो लोग रहे इंडिया और कश्मीर में, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट को, अपनी हुकूमत को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई किसी के पास इतनी बड़ी लेबर हो, दुनिया बनाती है नजरियाती लोगों को, पैसा खर्च करके वजूद में लेकर आती है कि वो हमारे लिए एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर किसी मुल्क के अंदर होंगे, दुनिया पैसे खर्च करती है इस पर, यहाँ पर सिर्फ नजरियात और मोहब्बत और इश्क अहले बैत अलैहिम सलाम, और फिर बाद में विलायत फकीह, मोहब्बत की बुनियाद पर पूरा का पूरा इलाका जो है ना वो इनकलाबी है। 70-80 लाख के करीब मुसलमान हैं बॉर्डर के एतबार से आप देखें, यानी एक तरफ इसके इंडिया लगता है, एक तरफ इसके चीन लगता है, और एक तरफ से पाकिस्तान लगता है, तीन बड़े मुल्कों के दरमियान में एक इलाका है। अगर यहाँ पर जो है वो इंडिया काबिज हो जाए या आज़ाद कर दिया जाए तो आज़ाद हो जाएगा, इसको आज़ाद नहीं रहने दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे फलस्तीनियों के अंदर एक छोटी सी गवर्नमेंट बनी है, इसराइल के अंदर छोटी छोटी गवर्नमेंट बनी है। अब मसला ये पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है ना, यानी मैं मुझे जो लग रहा है जिस तरह से बहुत ही आराम आराम से बढ़ रहे हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में पूरी जंग को मुजफ्फराबाद में लड़ रहे हैं, आपको पता है ना, यानी हमारी हुकूमत के सारे अहदेदार इस जंग को, हमारे हुक्मरान सारे इस जंग को मुजफ्फराबाद में बैठ के लड़ रहे हैं, मुसलसल मुज़ाकरात, मुसलसल मुजाहरे होंगे, हर जुमे को मगरब नमाज जुमा से पहले जो है वो हमने आधे घंटे बाहर निकलना है। ये तो अपने जज्बात को ठंडा करने वाली बात है, इस कौम के जज्बात को ठंडा कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर आप जितने भी मुजाहरे करते रहे, इस मुल्क में सारी सारे पाकिस्तानी बाहर निकल आए, रोड पर आ जाए कि मर्द औरतें बच्चे सब पूरा का पूरा 12-14-15-20 जो भी करोड़ हम लोग हैं, 20-22 करोड़ जितने भी लोग हैं, सारे के सारे रोड पर आ जाए अपने मुल्क के अंदर, तो भी क्या होगा भाई, फलस्तीनियों को क्या मिलेगा, सॉरी कश्मीरियों को क्या मिलेगा? कश्मीरी इस वक्त जो है वो जिस हालत में है, आपको पता है कि 40 दिन से ज्यादा कर्फ्यू, 40 दिन से कर्फ्यू को मतलब समझते हैं क्या है, यानी इनके जो घर के अंदर इनके बुजुर्गों का इंतकाल हुआ है ना, इन 40 दिनों में जिनको दवा नहीं मिली और उनका इंतकाल हुआ, इन्होंने अपने घर के अंदर घर के सहनों में उनको दफनाया है, अपने घर के सहनों में कब्रें बना दी हैं अपने बुजुर्गों की, कि जो दफन जिनका इंतकाल हो गया दवाएं ना मिलने की उम्मीद थी। ये मैं एक बात बता रहा हूँ, वो जो बातें दूसरी आ रही हैं खुदा ना करे वो सब सही हो कि रात को रेजिस्टेंस यानी ये जो मुजाहिदीन हैं इनको ढूंढने के लिए रातों में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वो कर्फ्यू तो लगा हुई है, नाकाबंदी करते हैं और घरों में घुसते हैं और उनके अंदर खवातीन को उठा के ले जाते हैं। ये बातें आना शुरू हो गई। जब आपने कमज़ोर कर दिया, खाना पीना उस घरों में नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये तो मुहर्रम में कुछ थोड़ा तहरुक किया और बाहर निकले और रोडों पर आए। बहरहाल इन लोगों को जो जैद हामिद का तजिया था, अभी तक मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन तजिया जैद हामिद का ही आया हुआ है। उसने 2 महीने का टाइम दिया था, कहा था 2 महीने तक कर्फ्यू लगेगा। ये बात उसने कह दी थी 4th दिन था कर्फ्यू का या 5वां दिन था कर्फ्यू का, 2 महीने उसने तक कर्फ्यू लगेगा। कर्फ्यू लगने के बाद जब देखेंगे कौम तक तबाह हो गया, नहीं ख़त्म हो गई ना, 2 महीने का कर्फ्यू का मतलब ये है कि कौम खाया पिया कुछ भी ना हो, घर के अंदर कुछ भी ना हो, तो ये सब अधमूए हो जाएंगे। फिर हम आज़ाद करेंगे, देखेंगे कौन बाहर आके मुजाहरे करता है, जो मुजाहरे करेगा उस लीडरशिप को उठा लेंगे, उस लीडरशिप को उठाने के बाद सबको शहीद कर देंगे, उसके बाद फिर कर्फ्यू लगा देंगे, वो फिर 1-2 महीने चलेगा, उसके बाद फिर आज़ाद करेंगे, फिर देखेंगे कौन बोलता है। यानी उसने कहा कि पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है कि वो इसमें से आधे फलस्तीनियों को शहीद कर देंगे, आधे फलस्तीनियों को शहीद कर देंगे, बकिया की इतनी बेइज्जती और तौहीन कर देंगे, इतनी इज्जत और आबरू लूट लेंगे कि कोई तैयार ही नहीं होगा बाहर निकलने पर। और इस तरह से उसके यानी ये इसराइल बाकायदा इसराइल मोदी को जो है वो सब लेके चल रहा है। दुनिया की खामोशी साबित कर रही है कि इसमें इसराइल का शामिल है, दुनिया की खामोशी साबित कर रही है कि इसमें इसराइल शामिल है। जिस जगह पर इसराइल और अमेरिका के हदफ हों वहाँ पर दुनिया खामोश हो जाती है, सारा मीडिया दुनिया खामोश। और हम जिस तरह से हमें आना चाहिए, मेरा ख्याल ये है कि अगर हम इसी तरह से खाली मुजाहरे करते रहे या आलमी सतह पर अपने रवाबित को मजबूत करके वहाँ पर कोशिश करते रहे कि यूनाइटेड नेशन में और फलां फलां जगह पर हमारी आवाज़ पहुँच जाए और नेटो जो हमला कर दे इंडिया के ऊपर या कोई और पावर हमला करवा दें हम किसी से और इंडिया पाबंदियाँ लगवा दें, भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो तैयार बैठे हैं बिल्कुल कि वो रेजिस्टेंस पावर का हिस्सा बने, वो तैयार बैठे हैं कि वो रेजिस्टेंस पावर का हिस्सा बने, वही जो सैयद हसन नसरुल्लाह जिसकी क़यादत कर रहे हैं पावर की, वो उसका हिस्सा बने जो तैयार बैठे हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान, आपने जो बात कही गया है पाकिस्तान जो है वो रेजिस्टेंस पावर का हिस्सा बनेगा या नहीं, मेरा ख्याल है कभी भी नहीं बनेगा। यानी इस पाकिस्तान के अंदर अभी तक इनको यकीन ही नहीं आया कि कौन इनका, इनको यकीन नहीं आया, मुरादी समझ में नहीं आया कि कौन इनका दोस्त है कौन इनका दुश्मन है, किससे करीब होने में इनको फ़ायदा है किससे दूर होने का इनको नुकसान है, कौन उनके लिए अच्छा है कौन उनके लिए बुरा है। अभी तक पाकिस्तान को यही समझ में नहीं आया, जब ये समझ में नहीं आया तो भाई बहुत मुश्किल है कि इनको ये बात समझ में आए। डरते हैं, ये डरते हैं, इतनी बड़ी पावर डरती है, यमन जैसा मुल्क नहीं डर रहा, आवाम को समझते हैं साथ नहीं देगी, नहीं, हुकुमरान हमारा डरपोक है, सियासतदान हमारे कमज़ोर हैं, क्योंकि मफादात जिंदा रहने के लिए ना, मुल्क को खाने के लिए बने ना ये लोग, थोड़ी कुछ मुल्क जो उसका मुकाम है उसको कभी वापस लाएंगे। पाकिस्तान का भारत यह हक नहीं है कि जो जिस तरह से पाकिस्तान को रखा गया है, पाकिस्तान कचरे का ढेर बना हुआ है, पता है या नहीं पता आपको, पाकिस्तान कचरे का ढेर बना हुआ है, बीमारियों की आमाजगा है ये, बीमारियों की आमाजगा है ये पाकिस्तान, ये साजिशों का गढ़ है, यहाँ पता नहीं क्या कुछ हो रहा है इस तरह से पाकिस्तान के अंदर, क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह से इस्तेहसाल कर रहे हैं, पाकिस्तान का ब्रेन खरीद रहे हैं, इसके जिस्म को मुर्दा कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। बहरहाल तफसीली बहस है कि पाकिस्तान के ऊपर की जाए तो हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उस पावर का हिस्सा नहीं बनेगा, और ना बनने की वजह से कश्मीर जो है उसका मौका कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, ऐसे तो नहीं रहेंगे ये लोग, ये सब तो रोडों पर आएंगे, जब ये लोग सब रोडों पर आएंगे कर्फ्यू तोड़ेंगे, ये शहादतें पेश करेंगे, इंशाल्लाह दुनिया के अंदर ये खबरें भी किसी ना किसी तरह से पहुँचेंगी, दुनिया की रिसोर्स पावर की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगी, और फिर वही लोग जिन्होंने शाम को बचाया था, वही लोग जिन्होंने इंशाल्लाह यमन को बचाया है, फिर वही लोग जो है वो किसी भी तरीके से अपने आप को वहाँ पहुँचाना शुरू कर देंगे, और ये जंग जो है वो रेजिस्टेंस पावर खुद ब खुद इसमें जो है वो रेजिस्टेंस पावर के यानी ना चाहते हुए भी ये उस हलके में आ जाएगी, और आना ही पड़ेगा, इसके अलावा लगता है कि और कोई हल कश्मीर के पास नहीं है।